और अगला जो खूबसूरत किरदार का नुक्ता है वो क्या है, ईसार। और ईसार का लफ्ज़ हो और सूरत हशर की आयत 9 हम ना पढ़ें, ये कभी नहीं हो सकती कि जिनका तذکرہ अल्लाह ताला ने कर दिया। और वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी सल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हैं, आपके पास बैठे बैठे एक भूखा आ गया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि घर में कुछ खाना है? कहीं से भी खाना नहीं मिला। ये मंजर देख रहे थे एक सहाबी का, अल्लाह के नबी मैं इनको ले जाऊँ अपने घर? देखिए क्या रिलैक्स्ड कल्चर था, मेहमान को बोझ थोड़ी बनता था उस वक़्त। हम तो 10 चीज़ें ना बनाए हमें सुकून ही नहीं मिलता। हालांकि उस दौर में कितना आसान लेते थे, तभी तो फिर मुश्किल नहीं खुशी होती थी दुख की बजाय। बंदे को बंदा अच्छा लगता है, अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो बीच के तकल्लुफात और सबके लाके और फिर जाके घर में उन्होंने बातें कर दी, हमें खिलाया क्या, रोका तो बड़े शौक से था, खिला डाल दी, और जा तो बहुत कर रही थी, और कल का खाना निकाल के खिला दिया। ये हमारी गंदी बातें हैं, बिलीव मी, ये हमारे सोसाइटी के बैड थिंग्स हैं। अगर आप ये सब छोड़ दीजिए, आप देखिए कि हर दिन आप मेरे घर में, आपके घर पकता तो हर घर में, लेकिन हम बीच में इन चीज़ों में पड़ते हैं। तो इन्होंने अल्लाह के नबी से कहा मैं इनको घर ले जाऊँ, तो घर ले गए। बीवी से कहा घर में कुछ खाने को है? कहा एक बंदे का, और बच्चे पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। कहा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चों को मैं बहला के सुला देती हूँ और आप मेहमान के साथ बैठ जाइएगा। और उस दौर में भी रिवाज था, आज भी है गो के, इसको आज हमारे कल्चर में इतना लेते नहीं है, कि आप मेहमान के साथ बैठ के हाथ चिलाते रहिएगा, मेहमान समझेगा कि आप खा रहे हैं तो बेसिकली आप नहीं खा रहे होंगे, और मैं चिराग गुल कर दूंगी बहाने से। अब उस दौर के हालात को सामने रखिए, ऐसे किया मियाँ बीवी ने, सामने बैठे मेहमान को नहीं पता चला कि मेरा मेज़बान सिर्फ मुँह चला रहा। और कहना बड़ा आसान है, सारे दिन की पेट में भूख हो फिर पूछिए ज़रा। वो कोई हर वक्त चिट चैट नहीं करते थे, स्नैकिंग नहीं होती थी उधर, मुंह में जो आया डाल दिया, नहीं तो भूखे लोग थे, और अपना खाना मेहमान को खिला दिया, मेहमान खा गया, मेज़बान नहीं खा रहा पता ही नहीं मेहमान को। सुबह के वक्त नबी सल्लम के साथ सहाबा की मीटिंग होती थी, फजर के बाद अक्सर बैठते थे, पूछा बैठो आओ, आपने इनको बुलाया, साथी आज रात क्या नेकी की है? कहा क्यों क्या हुआ, आपको क्या हुआ? किसने बताया? सूरत अशर की आयत 9 पढ़ दी, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल्ईमान। ये वो लोग हैं जो पहले ईमान लाए फिर हिजरत की, फिर ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आते हैं, कुछ मुहाजरीन और अंसार में, और किसी के मामले में अपने दिल में तंगी नहीं पाते। ये भी बात याद रखने की है, मोमिन का दिल किसी से तंग नहीं हो सकता। क्या कहा? फी सुदूरी हाजतम। आज आप अपने आप को पूछिए, मैं तो अपने आप से पूछ पूछ के थक गई हूँ, आप भी पूछिए खुद से, क्या आपका दिल कुछ लोगों से तंग है? जिंदगी में कोई एक बंदा या बंदी, ऑफ कोर्स आपके अपने जेंडर में ही होगा, ऐसा है जिसके साथ आप नहीं चल सकती? मैं फुलां के साथ काम नहीं कर सकती, फुलां है तो मैं नहीं हूँ, फुलां को देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं उनके अंडर काम नहीं कर सकती, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती, मैं उनके ऊपर बॉस नहीं बन सकती। बिलीव मी, अगर ऐसी कोई आदत है इसको निकाल दीजिए। अपने आप को ऐसे रोशन किताब की तरह पेश करें और कहें मैं हर एक के साथ हर हालात में हर सरकमस्टांसिस में काम कर सकती हूँ, क्यों? मैंने अल्लाह के लिए करना है, मैं सच्ची हूँ, मैं फेयर हूँ, मैं हैंकी पैंकी नहीं करूँगी। जब मैंने अपनी ट्राई माई बेस्ट करनी है अल्लाह के लिए, तो किसी बंदे को उससे कोई फ़र्क पड़े कि ना पड़े, मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सहाबा की खूबियाँ ही ये थी, और याद रखिए कि ईसार करने वाले ही असल में मोमिन होते हैं। बुखारी की रिवायत है हज़रत अनस से, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बुली अखीही मा युहिब्बुली नफ्सिही। तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने भाई के लिए वो ना पसंद करे जो के अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह औलाद के लिए भी एहसार है, बिल्कुल है। मुस्लिम की रिवायत 6694, एक औरत हज़रत आयशा के पास आई, दो बेटियां थी उसके पास, आयशा कहती मैंने उसको 3 खजूरें दे दी, कैसे दी होंगी सोच के, एक एक बेटी को दे देगी, एक खुद खा लेगी। इसने दोनों को एक एक दे दी और एक खजूर को अपने पास रख लिया कि बाद में खाऊंगी। अब क्या हुआ, दो बेटियों में एक ने खा के माँ से दूसरी भी मांगी, सोचिए जरा, होता है ना ऐसा। खैर उसने क्या किया कि वो जो दूसरी खजूर थी ना उसको दो टुकड़ों में काटा और एक उसको दिया जिसने मांगा, और दूसरी फिर रख ली और फिर वो उसने दूसरी बेटी को दी। हजरत आयशा कहती है कि उसका ये अमल मुझे मुतअज्जिब ही कर गया, मैं हैरान हो गई कि ये औरत जो खाना चाह रही थी खुद नहीं खाई और दूसरी को पूरी नहीं दी बल्कि आधी आधी दी। अल्लाह के नबी से जब उन्होंने इसका तذکرہ फरमाया तो आपने फरमाया इसके इस अमल ने इसके लिए जन्नत को वाजिब करा दिया और जहन्नम से इसे आज़ाद करा दिया। ये मुस्लिम की रिवायत है 6694। कभी आपके पास थोड़ा ही होता है और आप वो दूसरे को दे देते हैं। हमारे बड़ों में से किसी की बात के पूरी रोटी खाकर उतना पेट नहीं भरता जितना आधी रोटी तोड़कर किसी दूसरे को देने से भरता है। और ये कैसा वक्त होता था, सुबहान अल्लाह। और फिर आप देखिए कि जो ऊपर वाक्या साहबी का पड़ा है कुरान की आयत का हिस्सा बन गए। क़यामत तक जब तक लोग इस कुरान को पढ़ते रहेंगे उनकी ये खूबी भी सामने आती जाएगी कि ये अपने लोग हैं। और इनका ये वाक्या सही बुखारी में 3798 में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अबू हुरैरा की रिवायत है। और रिश्तेदारों के लिए भी इशारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनस की रिवायत है अबू तलहा के बारे में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मालदार शख्स थे मदीना में, खजूरों के बागात थे और उनको बैरहा नाम का बाग पसंद था। अल्लाह के नबी भी वहाँ जाते और उसका मीठा पानी पीते थे। और जब आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम तो उस वक़्त तक नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक अपनी मनपसंद चीज़ न खर्च करो। ये सुनकर अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ न खर्च कर लो, तो मुझे तो बैरहा का बाग पसंद है। देखिए उन्होंने सच बोला, हम कोई कंडम बेकार चीज़ देख कर कहते ये बड़ी पसंद है, अच्छी चीज़ पसंद की उन्होंने, कहा मैं इसको अल्लाह के लिए खैरात करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे लिए आखिरत में ज़खीरा होगा। आप इसको जहाँ चाहें खर्च करें, यहाँ पे यार आपको अमल की बात भी दिखेगी। उन्होंने किसको देना चाहा, नबी को, कि आप इसको यूज़ कीजिए जहाँ मर्जी लगा दें, ट्रस्ट था। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, खूब, बहुत खूब, ये तो बड़ी ही आमदनी का माल है, ये तो बड़ा नफ़े का सौदा किया तुमने, और जो बात तुमने कही वो मैंने सुन भी ली, लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि तुम ये अपने रिश्तेदारों को दे दो। और रिश्ते भी कौन से, करीबी। आपको पता है करीबी रिश्तों में शरीका होता है, चचा ताए के बेटों में शरीका होता है, एक भाई दूसरे भाई के बच्चों में शरीका होता है ना। आपने कहा अपने रिश्तेदारों को दे दो। अबू तलहा ने कहा अल्लाह के रसूल अब मैं ऐसा ही करूँगा, और उन्होंने वो बाग अपने रिश्तेदारों और चचा के बेटों को दिया। ये बुखारी की रिवायत है 1461। दिल पे हाथ रखे, हम कहते हैं दूसरों को दे देंगे आपको नहीं देना, मुश्किल लगता है देना, अपनों को ले, कल तक हमारा था अब इनका हो गया। क्या वो दिल थे उन लोगों के, वाकई समंदरों से गहरे उनके दिल थे। और फिर कभी कभी अपने साथ रहने वालों पर भी इशार करना पड़ता है, कभी खाने का, कभी काम का, कभी जिम्मेदारियों का। कैसे, सही मुस्लिम 6408 अबू मूसा शरी से, बेशक अशरी हजरात जब जिहाद में मोहताज होते या मदीना में इनके अहलो याल के लिए खाना कम पड़ जाता तो अपने पास मौजूद सब कुछ एक कपड़े में जमा करते, यानी जिसके पास जो होता वो लाई जाता और एक कपड़े में डालते रहते, फिर इसे आपस में एक बर्तन से बराबर तकसीम कर लेते, वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। अल्लाह के नबी ने कबीला अशर के लोगों की तारीफ फरमाई कि जब किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं, तो आप सब कुछ जमा करके सबको बराबर का बांटते। आम हालात में शेयरिंग बहुत आसान होती है, ऐसे हालात में शेयरिंग बहुत मुश्किल होती है। और इसी तरह से आपको पता है कि दोस्तों के साथ एसार का एक वाक्या बहुत ही खूबसूरत है, बुखारी की रिवायत है 6036 में, और ये वाक्या हमारे तक साहल बिन साद से पहुंचा। कहते कि एक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बर्दा लेकर आई, फिर खुद ही पूछने लगे तुम्हें पता है बर्दा क्या है, कहा शिमले को कहते हैं, सर का कपड़ा। हाँ, किसी ने कहा कि हाँ लुंगी जिसमें हाशिया बना होता है, यानी पहनने का एक कपड़ा था आप कह लीजिए। कहते हैं वो औरत नबी सल्लम के पास लाई, आपने उसे कबूल कर ली, आपको ज़रूरत भी थी, आपने पहन भी ली। सहाबा में से एक सहाबी थे अब्दुलरहमान बिन औफ, जब उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा ये पहने हुए तो कहा बड़ी अच्छी है, ये आप मुझे ही इनायत कर दीजिए। आपने फरमाया ले लो। जब आप वहाँ से उठकर गए तो अब आपने अंदर जाकर दूसरा पहन कर वो अब्दुलरहमान बिन औफ को दिया, तो कुछ लोगों ने उनको मलामत की। कल वाक्य सुन लिया ना आपने, ये वही लुंगी उनका कफन बनेगी। कुछ ने उनको कहा कि अल्लाह के नबी ने मना तो करना नहीं था, और आपको ये भी पता था कि आपको खुद इसकी ज़रूरत है, तो आपने क्यों मांग ली? तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इसकी बरकत का उम्मीदवार था, आप इसे पहन चुके थे और मेरी गरज ये थी कि मैं इस लुंगी में कफन दिया जाऊं। वैसे बड़ी ऊंची नजर वाले लोग थे ना वो लोग। आप देखिए किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे सहाबा करम? मदीना यूनिवर्सिटी आज है, कल नहीं थी। असल में ये इल्म होता है जो दिल बदल दे, और जिसके साथ जिंदगी में इस तरह की तब्दीली कल्ब का सामान हो जाए ना, जो दिल की तब्दीली का सामान कर लेना, उसकी फिर आखिरत भी संवरती है। और अब आपको ये बात भी समझ आ रही होगी कि अखलाक की बड़ी कीमत है, मुस्लिम किरदार असल में बेहतरीन ताकत है। आप सोचें ना, इस वक्त 2 बिलियन मुस्लिम्स, ये जो कुछ अभी तक पड़ा है सिर्फ इसी के ऊपर अमल करने लग जाएं, बाकी छोड़ भी दें, तो क्या दुनिया में हमारी इज्जत ना हो, हमारी कदर ना हो? हरगिज़ होगी, शर्त यह कि हम इसके ऊपर जमे रहें। लेकिन क्या करें इस दिल का, और क्या करें इस बात को कि दिल आता ही नहीं है। नफ्स हमेशा जो है ना सुस्ती और मुश्किल चीज़ों की तरफ अपने आप को लेकर जाता है। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हक बात का मुहाफिज बना दे। फिर अगली चीज़ है अदल। अदल का तذکرہ तो कुरान में इतनी मुख्तलिफ जगह है कि आप सबको मुझे लगता है ज़ुबानी भी कुछ याद होगा। सूरत नहल 90, इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा। यकीनन अल्लाह ताला अदल एहसान और रिश्तेदारों के हकूक अदा करने का हुक्म देता है। सूरत अल अनाम 152, वइज़ क़ुल्तुम फ़ादिलू वलो काना ज़ा क़ुरबा। जब बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, ख्वाह रिश्तेदारी क्यों ना हो, तो बोलने में भी इंसाफ होगा, अदल होगा, और अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद करता है। सूरह हुजरात 9, वक्सितू इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। और इंसाफ करो, यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। फिर अदल क्यों इख्तियार करें? क्योंकि अदल तकवा के करीब है। सूरह माईदा आयत 8 फरमाया, ए दिलू हुवा अक़रबुल तकवा। अदल करो क्योंकि ये तकवा के करीब है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदल व इंसाफ से काम लिया? बिल्कुल लिया। वो वाक़या नोट कीजिए जो कबीला मखज़ूम की एक औरत फ़ातिमा का था, चोरी की उसने, और आप लोगों ने हज़रत उसामा को भेजा सिफारशी बनाकर। तो आपने कहा अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये बुखारी की रिवायत है 67:88। और अदल करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे। सही मुस्लिम की रिवायत, इंसाफ करने वाले अल्लाह के नज़दीक नूर के मिंबरों पर होंगे, वो जो अपने फैसला जात अहलो याल और जो इनकी हुक्मरानी में हो इसमें इंसाफ करते थे। यानी आप जहाँ भी आपके बच्चे हैं तो उनमें अदल कीजिए, काम कर रहे हैं तो उनमें अदल कीजिए, और बड़े लेवल पे भी अदल होगा। और एक मारूफ रिवायत सभी को आनी चाहिए, 7 लोग, 7 अंडर द शेड ऑफ अर्श। बुखारी की रिवायत है, बहुत ही मारूफ है, उन 7 लोगों में एक शख्स कौन है? इमामुन आदिलुन। चलिए आप और मैं ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं कि अमल कैसे करें, मैं और आप कैसे अदल कर सकते हैं। ना तो हम किसी कोर्ट कचहरी के कोई नुमाइंदे हैं, ना पुलिस में। जी आप लोग बताइए अदल का क्या मतलब है? इस पे वही आयत आपको याद आ रही होगी सूरत नहल की, इन अल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसानी व इताई ज़िल कुरबा। तो इन तीनों कैटेगरीज पे तकरीबन 1-1.5 घंटा बात हुई हुई है, आप उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन अदल का सबसे पहला हकदार अल्लाह है। आप सूरत अल अराफ की पहली आयत ही लिख लें, अदल का लफ्ज़ वहाँ शिर्क की मुनाफी है। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के मुकाबले में क्या करते हैं, बहुम या दिलून। जाकर देखने में लगता है ये लोग तो अदल करते हैं, लेकिन वो अदल नहीं करते। अल्लाह के साथ। इदला कहते हैं तराजू के एक पाड़ को, दो होते हैं ना, एक इदला दो उदला, तो यानी जिस जगह अल्लाह को रखना होता है वहाँ दूसरों को रखने लग जाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह की हस्ती के बाद, यानी अल्लाह के साथ अदल क्या है कि उसका हक पहचाना जाए, उसकी कदर की जाए, उस जैसा मुकाम किसी दूसरे का ना समझा जाए, और इसी तरह से अल्लाह ताला की बात को माना जाए। उसके बाद अदल का हकदार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के साथ आपका मेरा अदल क्या है? अल्लाह के नबी को वही मुकाम दीजिए जो उनका होना चाहिए। अल्लाह के नबी से मोहब्बत दुनिया की हर चीज़, माल, हत्ता के औलाद, अपनी जान से भी ज़्यादा हो। फिर नबी के साथ अदल क्या है? जो दीन जितना जहाँ तक वो दे गए उधर ही रुक जाए, बेदात और इजाफे ना डाल दें उसमें। फिर नबी के साथ अदल क्या है कि नबी ने जैसी ज़िंदगी बसर की उसको काबिले अमल समझते हुए वैसी ही ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश रखी जाए। फिर इसी तरह से कुरान में अदल किया जाए, जो इसका हक है उसको अदा किया जाए, कमी बेशी ना हो, पढ़ने लिखने में लफ्ज़ों को बढ़ा या कम ना कर दिया जाए, मानी मफहूम ना बदल दिए जाएं। और इसके बाद फिर इंसानों में अदल, माँ बाप का, उनसे रिश्ता ना काटा जाए, उनकी बजाय किसी और का नाम अपने नाम के साथ न लगाया जाए, उनकी जो भी हमारे ऊपर मेहरबानी है उनको कंसिडर किया जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि बीवी के साथ अदल क्या है? दो बीवियों की सूरत में एक के हक दिए जाएं, दूसरी के भी दिए जाएं। फिर बाकी रिश्तेदारियों को कैसे निभाया जाए कि माँ को माँ का हक दिया जाए, बीवी को बीवी का। बच्चों में अदल क्या है? जैसे कि अभी हदीस सुनी, उनके साथ बराबरी का मामला हो। सब के साथ अदल करते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अपने साथ अदल क्या है? जी, सबसे अहम है ये अपने साथ अदल करना, जी, अपने आप को आग से बचाना है, ठीक है जी, आप ईमान को बुलंद करना है, जी, अपनी गलतियों की इसलाह करनी है, ठीक है, और जी आप शाबाश, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन की तरह आप खुद भी अपने ऊपर बोझ ना डालें, ऐसा, ठीक है जी आप, जी वो भी ठीक है जी, आप अपनी स्किल्स को पहचानिए, ज़िंदगी वैसी बसर करें जो आप वाकई वो बनने की कोशिश करें जो आप बन सकते हैं, खुद अपनी गलतियों को चेक कर लीजिए बजाय इसके कि फिर दूसरे करने लगे। शाबाश, सबसे प्यारा अदल ये कि अपनी इसलाह कीजिए। देखिए ना, दूसरे कब करेंगे जब आप खुद नहीं करेंगे? आपका घर साफ है, कोई दूसरा करेगा आके? आप खुद अपनी इसलाह कर लें, दूसरे आपको कभी भी नहीं टोकेंगे जी आप। शाबाश, वेरी गुड, ना जालिम बनिए ना मजलूम बनिए, यानी सब्र के नाम पे मजबूर और दुखी ना बनते फिरें, ठीक है। और कोई चीज़ किसी के जहन में? आप देखिए कि आप अदल आपकी ज़िंदगी का क्या, कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस्ड गुजारें, खाना पीना सोना जागना एक वक्त के साथ, बेहंगम और डिस्टॉर्टेड किस्म की ज़िंदगी गुजारना अपने साथ बेअदली करना है। और फिर अपने साथ अदल क्या है? इस दुनिया में रहने की उतनी कोशिश जितना यहाँ रहना है, और आगे आप पूरा करेंगे जी, माशाल्लाह, आधे आलिम तो आप भी हैं। इस दुनिया में इतनी कोशिश जितना यहाँ रहना है, आगे कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिर सबील, इस दुनिया में ऐसे जिए जैसे ट्रांजिट पैसेंजर, इस दुनिया के लिए उतनी फिक्र करें, उतनी मेहनत करें जितना यहाँ रहना है, और उधर जितना रहना है उधर तैयारी करें। कितना ना समझ होगा वो मुसाफिर, एक रात कहीं रहने जाए और 10 दिनों का सामान साथ ले जाए, आप क्या कहेंगे इसको? ना समझ तो दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? और कोई 10 दिन के लिए जाए तो 1 दिन का सामान ले जाए, ये भी ना समझ है। गर्मियों में जा रहा है तो सर्दियों का सामान उठा कर ले जाए, और सर्दियों में जा रहा है तो गर्मियों का ले जाए। ज़िंदगी को बेहतरीन फ़ैसलों के साथ गुजारिए। देखिए, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, आप उनको फुलफ़िल करें, ये भी आपका अदल है, ये लिखिए। हर इंसान की खाना पीना सोना आराम, फिर कुछ उसकी इमोशनल नीड्स होती हैं, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उससे प्यार करे, कुछ जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, कुछ सेक्सुअल नीड्स होती है। हर जज्बे को मुनासिब तरीके से पूरा कर लीजिए, आप बैलेंस्ड होंगे। बस दफ़ा हम दीन के नाम पे बस दफ़ा बोरिंग होने लगते हैं। मतलब देखिए कि खुश रहना एक आपका हक है, आपके घर वालों का भी हक है, और आप अब सिर्फ इसलिए नहीं खुश रह रहे कि आप नेक हो रहे हैं, दीनदार हो गए, तो आप जुल्म कर रहे हैं। कई जगहों पे यकीन करें, बड़े से बड़े मसले सिर्फ आप अपने साथ अदल करें। घर जाकर बैठिए, कागज़ कलम लें और लिखें, मैं अपने साथ अदल कैसे करूं। आप अपने एक एक रिश्ते को लें और फिर सवाल करें, क्या मैं अपने बच्चों के साथ अदल कर रही हूँ। हर रिश्ते ही लिख लेना। अब ये दो तीन बच्चों का नहीं मैं बात कर रही, ओवरऑल बच्चे, शौहर, घर वाले, दोस्त, आराम, प्रोफेशन, आपकी इबादत, आप अपने इर्द गिर्द चार छः दायरे खींचें और अपने आप को हर एंगल से पूछें, क्या मैं अपने साथ अदल कर रही हूँ। यकीन करें, हमारा जो कल्चर है स्पेशली, इसमें अक्सर लोग अपने लिए नहीं जी रहे, और फिर बाद में गिले, शिकवे, लड़ाइयाँ या बीमारियाँ। वो कर लीजिए जो आपको करना है, लेकिन सिर्फ जुल्म सहते रहना और पिसते रहना और ये सोचना कि हमें सवाब हो रहा होगा, शायद अल्लाह करे सब्र का सवाब तो हो जाएगा, लेकिन नासमझी भी होती है कई कुछ। तो हमेशा बैलेंस रहें, सही बात करें, सही सुने, ना छेड़े ना छोड़े, अपनी ज़िंदगी का हक़ ले, हिस्सा ले, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।